اور سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں حضرت شیخ صاحب کا سلام عرض کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ میرا سلام سب ساتھیوں کو فرزن فرزن دے. حضرت جی جب اجتماع شروع ہوتے ہیں تو ان کی طبیعت پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ جب کوئی نام لیتا ہے کہ کل جانا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ جماعت کس طرح بنی آپ سب جانتے ہیں پرانے ساتھی. ماشاء اللہ فرزن فرزن شہر کریا کریا گئے, ایک ایک بندے کو ساتھ ملایا. میں اس خاطر یہ اس رستے پہ چلی جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نشاندہی فرمائی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس پر چلے, تابعین تبع تابعین نے اس رستے اختیار کیا, صلحائے امت نے وہ رستہ اختیار کیا, اس رستے کی نشاندہی فرمائی. اور اس وقت میں اور یہ جو وقت جا رہا ہے اس میں یہ چیز بتانا جو ہے یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے. چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کا ازلی دشمن اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرما دی آپ کے کلام میں. ہمارے جد امجد سیدنا حضرت آدم علیہ السلام والسلام کو جب اس نے سجدہ نہیں کیا, اللہ کے حکم کی نافرمانی کی, تو اسے شیطان رجیم کر کہ جو دفع ہو جاؤ اس پر لعنت اور پھٹکار قیامت تک پڑتی رہے گی. پھر اس نے بھی کہا چونکہ شیطانیت جو ہے آپ یاد رکھیں جس پر بھی غالب آ جائے وہ خسارے میں چلا جاتا, کیونکہ یہ خاصا اس شیطان کا تھا. اس نے کہا کہ پھر مجھے آپ مہلت دیں, میں ان کو گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں, فرمایا حالانکہ ساری مخلوق اللہ کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل فرمائی کہ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے قابو نہیں آئیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت جی نے یہ چیز سیکھے اپنے شیخ سے, انہوں نے اپنے شیخ سے, انہوں نے اپنے شیخ سے, حتیٰ کہ یہ سلسلہ جو ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ملتا ہے. اور انہوں نے اس سلسلے کو جب سیکھ لیا, اس بات کو پلے باندھ لیا, تو یہ بات ان کے ذہن میں جب آ گئی تو اس شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے کمر بست ہو جانا, ہمیں اپنے ہتھیار جو ہیں وہ لے لینے چاہیے, ہمارے تلکش میں تمام تیر جمع ہو جائیں اس کو مارنے کے لیے اور اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے. پھر ایک جماعت کی تیاری ہے, ایک جماعت تیار ہو جائے کہ اس کہیں پر کوئی بس نہ چل سکے. یاد رکھیں آپ بڑے ماشاءاللہ ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں علم و دانش, جہاں علم و ہنر, ہر چیز لوگ واقف ہیں, کہ سنتے آئے ہیں آپ کتابوں میں بھی ہے کہ بھیڑیا جو ہے نا وہ کبھی کسی بھیڑ کو اچک نہیں سکتا جب تک وہ ریوڑ میں چل رہی ہو, حالانکہ وہ بھیڑ بیچاری اس کے سامنے کیا چیز ہے, لیکن جب بھیڑ ریوڑ سے الگ ہوتی ہے تو پھر وہ اس کو اچک لے جائے. یہی شیطان کا کمال ہے کہ وہ انسان کو جماعت سے الگ کرتا ہے. یہ جماعت سے نکلے تو پھر میں اس کا اثر کروں. جو جماعت سے نکلا آپ سب پرانے ساتھی جانتے ہیں ان کا کیا حشر ہوا. ان کو یاد کر کے جسم پر لرزہ طاری ہوتا ہے, آدمی کہتا ہے کہ وہ اتنی اونچی ہستیاں اور شیطان نے کس طرح انہیں گمراہ کیا. ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ہر وقت خوف طاری ہو. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب میں آگے چلا گیا ہوں, اب میں پہنچ گیا ہوں, کوئی پہنچا نہیں ہے. جب تک وہ شیخ کے دائرے اصل میں رہے گا, ان کے اس قوت کے اندر رہے گا, ان کے ساتھ جب یہ چمٹا رہے گا اور یہ دعا کرتا رہے گا کہ یا اللہ مجھے ان کے ساتھ جوڑے رکھ, پھر تو بچت کی امید ہے. یہ فکرہ آپ لکھ لیں, جب کوئی شیخ کو چھوڑ دیتا ہے वो शायद कितनी भी इबादत करे अगर तो फिर उसे तौफीक ही नहीं होती, वो कहीं तक चला जाए लेकिन जब शेख के ख्याल से उसे बदगुमानी होती है तो वो फिर रंगे दरगाह हो जाता है। शैतान को यही हुआ कि मैं तो नार से बना ये मिट्टी का है और मुझे हुक्म दिया जा रहा है कि तुम इसको सजदा करो, अगर वो कर लेता तो उस्ताद तो था फरिश्तों का लेकिन उसकी किस्मत में नहीं था। यही हाल होता है जब शागिर्द पढ़ जाता है कुछ, वो समझते हैं आप तो मैं उस्ताद से आगे निकल गए। हम जो आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करने के लिए कि उस्ताद को जिसने छोड़ा शेख से आगे निकलने की कोशिश की उसके पोछे कट जाते हैं, वो फिर कदम नहीं उठा सकता, फिर वो लंगड़ा लूला हो जाता है, फिर उसको कुछ समझ नहीं आती, उसका दिमाग जो है वो ख़राब हो जाता है। सबसे पहले जो जद पड़ती है जब शेख से अलग हो तो उसका दिमाग पे पड़ती, उसका अकल जो है वो उसका साथ छोड़ देता है, फिर उसको बेवकूफ़ी में बेवकूफ़ी रहती हर वक्त। तो हमें ये पैगाम इसलिए दिया है कि कोई ये ना समझे मैं तो पुराना हूँ। अक्सर पुराने जो हैं वो बोसीदा हो जाते हैं और उनको फिर कबाड़ी के पास भेज देते हैं और वो कई तो ऐसे बोसीदा होते हैं कि वो भी उनको गड्ढे में डालते हैं। हम पुराने नहीं हैं, हम सब नए हैं। ये समझें कि मौत हमारे पीछे है, हम मौत के आगे हैं। किसी वक्त भी जब उसे हुक्म मिल जाएगा वो हमें दबोच लेगी। कुल्लू नफ्स ज़ायकतुल मौत, हर जीव जो आया दुनिया में उसने मौत का जायका चखना है और मौत से डरते रहना चाहिए, इसलिए कि अगर इसकी मौत ईमान पे नहीं आती तो फिर वो जो इसका हशर होगा वो वही होगा जो काफिरों और मुशरिकीन का होता है। ईमान को कायम रखने के लिए ये जो मेरे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया, फिर इन खुलफा को मुकर्रर किया, इन्होंने इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया, लेकिन आपके सामने है कि ये पैगाम सुनने के बावजूद ये चीज़ करने के बावजूद बेचारे इस जमात से अलग हो गए। जब भी आप जिक्र करें ये समझें, शायद मैं आज पहले दिन कर रहा हूँ, मैं मुंतजी हूँ। वो अपने आप को मुंतही ना समझे, मिर्जे ने मुंतही समझा था तो पैगंबर बन गया, उसने दावा पैगंबरी का कर दिया। कोई मुंतही नहीं है, हम मुंतजी हैं। यूं समझे कि आज इब्तदा की है और ये भी समझे कि शायद ये मेरा आखिरी जिक्र हो, मौत इसके बाद आ जाए। ये आगे निकलने वाले घोड़े सर पर जो दौड़ते हैं वही गिरते हैं, सर पर दौड़ने की जरूरत नहीं है। और ये भी एक बात बता दूँ, नहायत आजी और इंकसारी के साथ, कोई ये ना समझे कि शेख को क्या पता है कि मेरे दिल के अंदर क्या है। इसमें कोई शक नहीं कि शेख जो है वो गैब की बातें जानता है, ये शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि गैब सिर्फ मेरे अल्लाह को बन। उसने अपने पैगंबरों को भी उतनी बात बताई जिसकी जरूरत थी, जरूरत से ज्यादा चीज नहीं बताई। मेरे रब का इल्म कितना है, कितना वसी इल्म है। वो परवरदिगार जिसने हमें पैदा किया, आप समझते हैं कि क्या हैसियत थी जिसे हम दुनिया में आए। कितनी मखलूक है जिसे आप नहीं जानते, ना मैं जानता हूं, ना साइंसदानों ने अभी तक देखी। उनकी अकल के घोड़े जो है बेबस हो गए हैं, किसी को कुछ खबर नहीं इस कायनात में क्या कुछ हो रहा है। अल्लाह ताला की कायनात इतनी वसी है और उस कायनात में कैसे कैसे लोग पैदा हुए ये भी हम नहीं जानते, लेकिन हम ये तो जरूर जानते हैं कि जो शेख बनता है ना उसके सीने में अल्लाह एक दौलत रखते हैं और उस दौलत को कहते हैं नूर, नूर बसीरत। और कहते हैं कि मोमन की बसीरत से डरो, मोमन की बसीरत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। और ये जब शेख के सामने आदमी बैठा होता है उसको अपने नूर बसीरत से जज करते हैं कि ये जो कुछ कह रहा है इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। ये वाजे होता है गैब नहीं है, ये मैंने अर्ज कर दिया ये नूर बसीरत है, तो शेख के सामने ऐसे बैठ के जैसे से कुछ नहीं पता, बस जो कुछ है यही से। जब तो ये बात होगी मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फिर तो मामला जो है वो हमारे लिए आसान हो जाए। जब शेख से आगे बढ़ने की आगे बढ़ने का ये भी तरीका है, ये चतर चलाकियों को उतर आता है, इस ये समझता है चतर चलाकी अगर चलती तो शैतान की चतर चलाकी से ज्यादा कोई चला नहीं। रांधा दरगाह हुआ, चतर चलाकियां शेख के सामने नहीं चलती, वहां सिर्फ और सिर्फ अपना सीना लेके जाए और ये देखे कि वो सब कुछ देख रहे हैं, और फिर वहां दिल ही दिल में जी में तौबा करे, या अल्लाह ये जो मैंने सबसे बड़े गुनाह लोग कहते हैं कि वो जिना किया है, उसने डाका मारा है, उसने चोरी की है, उसने माल जब्त कर लिया है, ये गुनाह बहुत बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सब काबिल माफी है। जब ये तौबा करता है तो अल्लाह इन सबको माफ कर देता है, सच्ची तौबा के लिए निकलता है घर से तो मेरा अल्लाह ये सारे बड़े बड़े गुनाह सब माफ कर देता है, लेकिन ये गुनाह कि जिसने आपको सीधे रास्ते पे लगाया हो उसके बारे में आपके पास बदगुमानी आ जाए, बदगुमानी ये नहीं है कि आप मुंह से कुछ कहें, आपके दिल पे जो बात आती है वो कौन नोट करता है, जिसने आपको पैदा किया। आप शेख का ये काम है कि बंदे को अल्लाह के साथ ताल्लुक पैदा कर ले, फिर ये अल्लाह की दायरे एहसान में है, वो जानता है कि इस बंदे के दिल में क्या है, वो चतर चलाकी जो है वो छोड़े, ये उसी को मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नूर को अपने सीने में जमा करना चाहते हैं। जब अगर देख साहब अल्लाह इनकी मजीद दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह इन्हें सिर्फ की जिंदगी अता फरमाए और इनका साया हम सब पर तादेर कहम फरमाए, ये वो हस्ती हैं जो कायनात में कभी सदियों बाद आती, आप और मैं जिस जमाने से गुजर रहे हैं ये इम्तिहान का जमाना है, क्यामत की घड़ियां हैं, और जो लोग आलिम दीन हैं वो जानते हैं कि इस वक्त की निशानदेही अहदीस में कर दी है, कुरान गवाह है, वो जानते हैं। हम उस जमाने से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला की पनाह, अल्लाह ताला हमें शैतान के शुरू से और नफ्स के वसावे से महफूज रखे। याद रखिए शैतान के बारे में तो पता चलता है, आदमी कहता है ठीक है, लेकिन जो ये वसवसा डालता है, ये जो बदगुमानी पैदा करता है इसके अंदर, ये सख्त है। जो नफ्स के शर से बच गया वो कामयाब हो गया, जो नफ्स के नरगे में आ गया वो तबाह बर्बाद हो गया। दुआ ये करें कि या अल्लाह शयातीन के शुरूर से नफ्स के वसावस से महफूज फरमा। जब आप नफ्स के खिलाफ ये जिहाद है, मेरे शेख ने ये चीज, मेरे शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलम थे, जय्यद आलम थे, हम उनके हम असर ये बात जानते थे कि अल्लाह ने इन्हें कितना ज़ाहिर इल्म दिया, समुंदर थे ज़ाहिर इल्म के, और मैं बांगे दोहर जाता हूं कि इस खिते में उन जैसा आलम पैदा नहीं हुआ, और उनमें इंकसारी क्या थी कि उलमा जो कहते हैं कि मौलाना साहब मुहद्दिस थे, लेकिन आपने कभी नहीं कहा, इस चीज को छुपाया। चार किताबें पढ़ने के बाद लोग कहते हैं मैं आलिम बन गया हूं, मेरे हजरत ने एक एक किताब पढ़ने के लिए सैकड़ों मील का सफर तय किया, उस्ताद के पास गया वो पढ़ा, और कभी नहीं कहा कि मैं आलिम हूं, ना कभी लिखा मौलाना, लिखा मौलवी, अल्लाह याद था, और उसमें भी फकीर का लफ्ज साथ मिला देते, इंकसारी इतनी, लिबास और मकानियत से नहीं पता चलता था कि ये किसी बड़े सिलसिले के शेख हैं। अल्लाह ने उन्हें ज़ाहिर इल्म जो दिया, मैं उलमा से मिला हूँ, वो कहते हैं हम जानते हैं उन्हें, उलमा का जब बैठते हैं तो कहते हैं कि वो उन जैसा कोई اس وقت میں مفصل نہیں گزرا. قرآن کو جیسے میرے شیخ نے سمجھا بہت قلیل لوگ ہوں گے جنہوں نے اس پائے تک سمجھ آئی ہو. یہ سارے کام کیے, مناظرے کیے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ فرقہ باطلہ کے خلاف جب میں اٹھا, میں نوجوان تھا اور اس وقت کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلتا. میں تنے تنہا نکلا اور لمبے سفر کیے اور دشمن کو شکست فاش دی. علم ظاہر علم کا وہ پایا تھا, علماء جانتے ہیں, لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا, تقریریں کی, واعظ کیے, مناظرے کیے, کتابیں لکھیں, سب کچھ کیا, لیکن دیکھا کہ ان کو فرق نہیں پڑا. یہ سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کا خیر سر. پھر جو کام شروع کیا نا وہ اللہ کا نہیں. اور یاد رکھیں, جب تک سینے میں اللہ کا نہیں آتی تو مولوی لاکھ آپ کو بتاتا رہے آپ کو سمجھ نہیں آئی. وہ بیچارہ تو بتاتا ہے ممبر رسول پر, سب مولانا حضرات صحیح بات کرتے ہیں, آپ کے سینے میں نہیں اترے گی اس لیے کہ اس سینے کے اندر میل ہے. اور یہ سمجھ تو آتی ہے قلب کو, قلب تو ہم نے سیاہ کر, ہمارا قلب سیاہ ہو چکا ہے. ہم لالچی بھی ہیں, ہم بدجانت بھی ہیں, ہم خائن بھی ہیں, اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہم جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں. ہم وہ کرتے نہیں ہیں جو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. جو کرتے نہیں ہیں وہ کیوں بیان کرتے. یہ جو قرآن اترا, یہ اگر بغیر وہی کے اترتا تو سارے لوگ دیکھتے کہ وہی آئی ہے, وہ پڑھا رہی ہے شیخ نبی علیہ السلام. لیکن اس نے کیسے, اللہ تعالیٰ نے اتارا وہی بھی جو ہے وہ بھی قریب نہیں جاتی تھی, اس کو بھی علم جو ہے الہامی طور پر انکار کیا جاتا تھا اور وہ اس کو ضبط کر کے پیغمبر کے اوپر بھی, پیغمبر کے قلب پہ انکار کرتے. جب شروع میں وہی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرتے تھے کہ میں اس کو ضبط کر رہا ہوں. قرآن میں آئے گا کہ آپ کو جلدی کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہم سکھا دیں گے, ہم یاد کرا دیں گے, آپ صرف جو ہے سن لیں. پھر وہ قرآن جو آیا کہاں اترا, قرآن میں آتا ہے آپ کے پاس ماشاء اللہ اس شہر بھرا ہوا علماء, جو ہماری جماعت میں آپ علماء ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ قرآن مجید جو ہے نا قلب کے اوپر اترا اور اسی قلب نے پیغامات لیے اور یہ وہی جو ہے نا تمام پیغمبروں پہ آئی. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے, انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو, اپنی قوموں کو یہ بات بتانے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. لیکن کئی کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا, کئیوں کے ساتھ 4-5 تھے, لیکن انہوں نے چھوڑ نہیں دیا, وہ کرتے رہے کیونکہ یہ پیغام ابدی ہے, یہ پہنچانا تھا. اور یہ جو قلب اگر صاف نہیں ہے نا تو جو میں بات کر رہا ہوں آپ کے دل میں نہیں جائے, یہ میں آپ کو بتا. اور نہ شیخ کی بات جائے گی کیونکہ آپ نے اس کو گندا کر لیا ہے, غلیظ کر لیا ہے. یہ جھوٹ سے غلیظ ہوتا ہے, جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے اور ہم اس کو جناب تفنن تبا کے طور پر بھی بول دیتے. اگر ایسا بھی ہو تو داغ لگ جاتا ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے, پھر دوسرا جھوٹ, پھر تیسرا, پھر سینکڑوں جھوٹ اور اس کے دل میں جم جائے. پھر سب سے بڑی بات, اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ بھائی اپنے قرابداروں کے ساتھ نیکی کرو. یہ بہنوں کا حق مار دیتا ہے, یہ بھائیوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, یہ ہمسایوں کے ساتھ اس کا طریقہ کار جو ہے برا ہے, یہ ساری چیز یہ سمجھ دیں گی. وہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں ماننا, یہ تو کوئی اور ہے جسے قبر میں جانا ہے. یہ سارے گناہ جو ہے نا یہ या तो धोने की कोशिश करे, ये धोने की कोशिश नहीं करता, ये उसके सीने कलम पे जमते रहते। मेरे अज़ीज़ जी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने देखा कि जब इस कलम की सफाई नहीं होती तो इसको कोई फायदा नहीं होगा। फिर आप इस मिशन को लेकर उठे, और ये भी बताऊं कि उस वक्त लाखों के लोग नहीं थे कि एक दफा आपने ऐलान किया तो लाखों लोग जमा हो गए कि चले अब हम सीखते हैं कि ये चीज क्या है। एक आदमी जब शुरू किया तो एक आदमी, और फिर इसके बाद सैकड़ों आए, हजारों आए, लाखों आए, दुनिया के कोने कोने में अब ये पैगाम पहुंच गया है। कोई ये नहीं कह सकता हमें पता नहीं था। फरमाते हैं कि मैंने फिर ये जब देखा कि मुझे असर नहीं होता वादो नसीहत का, तो फिर ये मामला जो है जो आ रहा था मशायख से सदियों से, फिर उस पैगाम उस पर अमल किया और एक एक को जोड़ा, उनको लेके आए, बताया, फिर ये जमात बनी। ये जमात ऐसे नहीं बन गई कि आप आए और हमने आपको आपको बताया और होंगे। हजरत बेग साहब मद्दा जिलुल आली ने अपनी जवानी लगाई, अपना बुढ़ापा लगा दिया, बीमारी में भी गए कनाडा अमेरिका, लेट के गए जहाज में, और अब जब चलने के काबिल नहीं है फिर भी मीरपुर कश्मीर में गए, शाहकोट गए, लाहौर गए। हजरत शाह साहब अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, कहते हैं कि अजीब अल्लाह ताला ने इनको बनाया है इस बीमारी में, और क्यों गए ये बात नोट करने वाली है कि ये जो सबक सिखाया है ये शेख की सोबत के बगैर नहीं मिलता। सोबत शेख नहीं होगी लेकिन सोबत के लिए जाते हैं ना, तो ये फिर कोशिश ये करता है कि मेरी बात भी शेख तक पहुंचे और मैं भी पता चल जाए शेख को मैं भी कोई चीज़ हूँ। तू कोई चीज नहीं है, शेख की सोबत में बैठे तो ऐसे लगे कि मैं पहली दफा आया हूँ और जो पहले मैंने सीखा था वो सारा मैं तो लुटा चुका हूँ। फिर तो कोई उधर से पैगाम आएगा और दिल कबूल करेगा। और ये पैगाम क्या था? ये अबदी पैगाम था, आके इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 साल पहले कह दिया था कि तेरे सीने में एक ऐसा गोश्त का लोथड़ा है और वो लोथड़ा अगर फसादी है तो सारा जिस्म फसादी, अगर वो साफ है तो सारा जिस्म साफ। उस लोथड़े की इसलाह के लिए, उस गोश्त के लोथड़े की इसलाह के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि हर चीज की सफाई के लिए कोई साइकिल होता है। कपड़े के लिए आजकल साबुन सर्फ निकल आए, आप जब बर्तन साफ नहीं होता तो फिर उसमें मांजना पड़ता है, इसको अगर कोई गलाजत लग जाए तो उसको धोना पड़ता है। जब इसके लिए जो है आप फरमाते हैं इसके लिए अल्लाह का अल्लाह की जो है ना वो जरबे लगेंगी और तेजी से लगेंगी, रोज लगेंगी, सुबह लगेंगी, शाम को लगेंगी, तो फिर ये इसकी मैल और कुचैल दूर होगी। ये नहीं कि आज तो आपने कर लिया इज्तिमा में आ गए, ये सुबह शाम का काम है, ये सुबह भी करे शाम को भी करे। जब सुबह करेगा तो इसको तौफीक हो शाम का कर ले, लेकिन अगर ये शाम का नहीं करता तो फिर अल्लाह ताला क्या जो पैगाम है ये फिर गाफिलों में, ये फिर गाफिल है। अगर सुबह किया रात को इसको तौफीक नहीं हुई, और अगर रात को किया तो सुबह तौफीक नहीं हुई, तो फिर गाफिलीन में से। इसको सीखना होगा, सीख के फिर इसको करना होगा, शब और रोज करना होगा, क्योंकि शब और रोज हम इसमें से गुजर रहे हैं दुनिया से। अगर आप कुछ भी ना करें तो ये जो सांस लेते हैं ये भी आप बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि अब तो आप सब जानते हैं आप इधर बैठे हुए जनाब मोबाइल ही दे, अब तो बच्चा बच्चा जानता है वो चीज़ जानते हैं जो मैं नहीं जानता। हाँ जो इसके साथ खेलते होंगे तो पता होगा, लेकिन दुनिया की तमाम बुराइयाँ इस छोटे से आले में आ गई। मेक्सिको में जो कुछ हो रहा है वो आप यहाँ देख रहे हैं, और जो कुछ चीचो की मलिया में हो रहा है वो मेक्सिको में देख रहा है। ये सारी चीजें आ गई हैं। अब जब ये सांस लेता है तो ये गाने बजाने ये सब मौलकों में, हमारा तो सांस लेना भी गुनाह वाला है, इसलिए हमें बहुत जरूरत है कि हम तो उस वक्त आए हैं जब हर तरफ गिलाजत है, जब हर तरफ गंद है। और ये जो हजरत जी ये इस्तेमाल करते हैं, ये मत समझे कि उन्होंने हमें कोई बड़ा समझ के भेजा है कि ये इनको बहुत बड़े हैं इसलिए भेजा कि ये जाएंगे और लोग कहेंगे कि जी हजरत जी के ये नुमाइंदे आ गए, सफीर आ गए। पैगाम वो है जो बड़ा हजरत जी ने दिया और हजरत बेग साहब ने दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। हम बड़े नहीं हैं, बड़ा वो पैगाम है जो आके नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला और आपके सीनों तक आया। तो आप जो जमा हुए हैं और जमा होते रहेंगे और ये काम करते रहेंगे तो ये धूल जो है ना मिटती रहेगी। अगर इतना भी हो जाए कि ये जिस दिन इसकी मौत आए उस दिन इसने दोनों जिक्र किए हों तो और क्या चाहिए। और कब्र जो है अंधेरी कब्र है उसके लिए ज्यादा राह क्या है, वो है सीने का नूर। जब ये नूर लेके जाएगा कब्र मुनव्वर हो जाएगी तो फिर वो कितनी देर वहां रहना ये किसी को नहीं पता। फिर जो इसको लेके गए उसकी निशानियां अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ औकात में दिखाई कि वो लोग जो अल्लाह के साथ जुड़ गए थे उनको अल्लाह ताला ने बरज़ख में भी क्या क्या इना वादा था फरमाया। ये सारी जो इस्तेमाल है इस वास्ते है कि हम अल्लाह का नाम सीख लें। आप में से अक्सर वो लोग हैं जो जानते हैं इसको, कई अरसे से कर रहे हैं, चाहे रेगुलरली नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको पता तो है किस तरह करना है। जो नए साथी आए हैं उनकी खिदमत में अर्ज कर दूँ, ये जो मैंने चंद अल्फाज बयान किए हैं इसका लुबे लुबाब ये है कि ये जो कलर है ना, ये तो आपको देखे आजकल तो हर आदमी जानता है ये कलर किधर है। बीमारियां इतनी आ गई हैं, वो कहते हैं ये दिल की बीमारी है, इसी दिल के अंदर वो जोर है जो अल्लाह ने रखा है जिसके ऊपर वही भी नाजिल हुई, वहीं से ये सारी चीजें आती हैं। उस कलर के ऊपर जो है ना उस जोर को जो है ना हमने चमकाना है, वो जोर जो अंधा हो गया है उसको चमकाना है, और चमकाने के लिए अल्लाह का नाम है। और जो हमारा तरीका है तरीके सारे ठीक हैं, जैसे चार मजाहब अफजाई इसी तरह से चार बड़े सिलसिले हैं बादवी इलम के, और चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया सोलवंदी। नक्शबंदी जो है इनका सिलसिला चलता है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। इस सिलसिला आप यूं कहें कि ये खुश नसीब हैं लोग जिन्हें ये सिलसिला मिल जाता है। फिर नक्शबंदियों में भी ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ये सिलसिला मिला नक्शबंदी वैसी, मेरे हजरत ने ये फैज बरज़ख से अता किया और फिर अल्लाह ताला ने उनको वो कुव्वत अता फरमाई कि फिर बरज़ख वालों को ये फैज पहुँचाया। कितनी बड़ी हस्तियाँ हुई जब हजरत दुनिया में थे उनका नाम लेते थे तो फरमाते थे कि उनकी जूतियाँ और हमारा साथ, लेकर इनमें से अक्सर व बेशतर के साथ मेरा उस्तादी शगिर्दी का ताल्लुक है। अल्लाह ने वो आपको मर्तबा बातिन भी दिया जो जाहिरी था, उससे भी बुलंदतर मर्तबा बातिन में भी दिया, रूहानियत भी अदा की, ऐसी अदा की जो उनके पास गया वो भी रूहानी हो गया। हाँ ये उसकी बदकिस्मती है कि उसने सबक को भुला दिया, उसको तो आप डंडे से याद करवा नहीं सकते। बात मैंने बड़ी लंबी कर दी, मैं इसलिए कर दी कि आपकी और मेरी समझ आ रही, करता मैं इसलिए हूँ कि मुझे इसकी समझ आ जाए और मैं खुद सीधा हो जाऊँ, कोई ये ना समझे कि ये बड़े इसलाह पजीर हैं, हम सब इसलाह पजीर हैं और मरते दम तक हमें इसलाह की जरूरत है। इसीलिए तो शेख पकड़ते हैं कि ताकि उसकी वजह से इसकी हमारी इसलाह होती रहे। तो ये इसलाह जो हमारे नक्शबंदी तरीके से होती है ये सांस के साथ जिक्र करते हैं और इसे पास अनपास भी कहते हैं, यानी हर सांस की निगरानी करना है। और इसे जिक्र खफी भी कहते हैं कि आप यहाँ अंदाजा कर रहे होते हैं कोई बात से आपको पता नहीं चलता कि यार ये कर क्या रहे, یہ صرف کسی اور وجہ کو بنے. پھر آپ جب خلوص کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور یہ ارادہ لے کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ میں مجھے بارگاہ میں آ گیا, میں گناہگار صحیح, بدکار صحیح, خطاکار, لیکن مجھے حال ہے, میں تیرا نام محض اس لیے لے رہا ہوں کہ تیرا حکم ہے اور تیرے نام میں یہ برکت ہے کہ میرے قلب کی صفائی ہو جائے. یہ آپ نے منہ سے کہنا نہیں, یہ آپ کا دل خود بخود کہے گا, آپ کے سینے سے یہ بات نکلے گی بیٹا کہ ہم پہنچ جائیں اور آنکھیں بند ہوں گی, قبلہ رو کے آپ بیٹھ جائیں گے سیدھی صفحے کر کے, اور ذکر کروانے والے جو بزرگ ہیں وہ چند کلمات پڑھیں گے, جیسے تیسرا کلمہ ہے وہ سارا پڑھیں گے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پھر تو جو بحث آتی ہے وہ اس جگہ پہ جو میں نے نشاندہی کی ہے وہ اسی پہ دھیان دیں گے, یہ اس کو ٹٹول دینا ہے کہ وہ جو ہے کس جگہ, اور یہ آپ ضرب لگائیں گے وہاں پہنچ جائے گی. پھر جناب یہ جو بحث آتی ہے یہ قلب کے اوپر ضربے لگاتا رہے گا, ضرب لگا کے میں دکھاتا ہوں, پھر اس کے بعد باقی حضرات جو ہیں ان کے وہ لطائف آگے چلتے رہیں گے. روح سری خفی اخفا نفس سلطان الرزکار, اور پھر اس کے بعد کہیں گے قلب میں آ جائیں, پھر قلب کے بعد جو قلب والا ساتھی ہے وہ قلب کے اوپر دھیان دیں گے کہ میں نے جو سبق پڑھا ہے کہاں تک یاد, اور پھر اس کی جو ضربیاں لگتی رہیں, پھر یہ چند دن کسی کے ساتھ بیٹھ کے کرے یا اکیلے میں کرے, جماعت کے ساتھ کرے, پھر کچھ دن کرے, تو اس کا قلب جو ہے نا اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا اور اس کے چہرے کی شکل بدل جائے گی. یہ آج تصویر بھیج رہے کہ آج میری کیا شکل ہے, یہ اللہ اللہ کرے, اس کے بعد پھر تصویر لے اور کمپیئر کرے, یا اللہ میں یہ تھا اور تو نے مجھے یہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ اس کو پھر سنبھالنے کی ضرورت ہے, چونکہ اب یہ خزانہ آ گیا ہے, اس پر خیال رہے کہ اب ڈاکہ بھی پڑے, یہ جو راجن ہے وہ ڈاکہ بھی ڈالے گا, کیونکہ خزانے وہی ڈاکو آتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے. اب آپ کے سینے میں خزانہ آ گیا, اب شیطان سے آپ کو بچنا ہوگا, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ شیخ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے, اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت جی کو صحت دے دیں, وہ آپ کے درمیان میں آئیں, آپ ان کی صحبت حاصل کریں, اور جب یہ جمعہ ہوتا ہے مرشد آباد کا اس میں جوک در جوک جائیں, آپ ان کی زیارت کریں, رج رج کی زیارت کریں, اور اس میں اپنی جان اور مال دونوں لگائیں گے اور ساتھ یہ ذکر کریں گے تو آپ کا کام بند ہے. اب آپ کی آنکھیں بند ہیں, آپ کوئی نہیں دیکھ رہا, آپ جو چیز آپ کے ماننے اور ذکر کرنے میں اس کو بھی بے شک آپ اتار کے اپنی جیب میں رکھ لیں یا سامنے رکھ لیں, اور آپ پورے یقین کامل کے ساتھ درجے لگائیں, یہاں سے لفظ اللہ لینا ہے سانس کے ساتھ, اور روح کی ذرا بھی سانس کے ساتھ لگائیں, اللہ
ٹیشو پیپر ہوتا تو
یہ لگاتا رہے سر, اور 20-25 منٹ تک یہ ضربیں لگتی رہیں گی, یہ ڈھیلا نہ پڑے, چاہے پرانا ہے یا نیا ہے, یہ اس کی ہر ضرب پچھلی ضرب سے قوت والی ہو, اور سانس جو ہے نا وہ بھی جو ہے ٹوٹے نہیں, سانس ٹوٹے نہیں, لگاتار یہ کرے, اور پھر جب یہ کرتا رہے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ کام بن جائے گا, اور جب اگلی دفعہ ہم آئیں گے تو آپ یقیناً بہتر حالت میں ہوں گے اور ہم بھی بہتر حالت میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک دفعہ دیکھ لیں یہاں سے لفظ اللہ اٹھانا ہے, اللہ ز जोर से और कुवत के साथ और ताकत के साथ और तेजी के साथ। इस तरह से करेंगे और फिर उसके बाद दुआ होगी, मुराकबात होंगे, मुराकबात के बाद दुआ होगी और फिर उसके बाद आप जो है ना नमाज होगी, फिर आप खाना खाएं, सो जाएं, फिर सुबह की तैयारी करें, फिर सुबह का जिक्र होगा। वह आखिर दावा ना अलहम्दुलिल्लाह।